घर छोड़ने के बाद भी गृहस्थ कहेंगे क्या? निकले, घर छोड़े और परिक्रमा फिर भी न छोड़े, तो ऐसे भी तो होते हैं ना। कौन होते हैं? घर तो छोड़ दिया है, घर का त्याग कर दिया है, लेकिन वस्त्र का त्याग नहीं किया, तो उनको भी क्या गृहस्थ कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो वो कौन है? जरा सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, वो कौन है जो घर तो छोड़ दिया लेकिन वस्त्र नहीं छोड़ा? बिल्कुल ठीक है, अयलर और क्षुल्लर, इनका नियम से घर त्याग तो रहता है, लेकिन क्या नहीं त्यागते हैं? ये वस्त्र नहीं त्यागते। और जो घर को छोड़ देते हैं लेकिन वस्त्र नहीं त्यागते, उन्हीं को कहते हैं श्रावक। घर त्याग हो और वस्त्र त्याग ना हो तो वो श्रावक कहलाए। अब इसमें एक बात समझने की है, घर त्याग हो वस्त्र त्याग न हो, उनको तो श्रावक कहते ही हैं, लेकिन घर में भी रहते हो और वस्त्र भी त्याग, वस्त्र भी घर में भी रहते हो और वस्त्र भी रखते हो किंतु प्रतिमाधारी हो। देखो तीन बातें हो गई, घर में भी रह रहे हैं, वस्त्र भी रखते हैं, लेकिन घर के त्यागी नहीं है, प्रतिमाधारी है। प्रतिमा यानी व्रत, श्रावकों के 11 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, ये श्रावकों को पता रहना चाहिए। श्रावण धर्म श्रावकों को भी पता नहीं है तो श्रावक क्या करेगा? हम लोगों को श्रावकों को श्रावक धर्म पता रहना चाहिए, और यदि आप लोग मुनि बन जाए तो कौन सा धर्म पता रहना चाहिए? मुनि धर्म पता रहना चाहिए। पुलिस बन जाए तो कौन सा संविधान मालूम रहना चाहिए, कौन से कानून मालूम रहना चाहिए? तो उस स्थानीय जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से आप जानते ही हैं, तो वो पता रहना चाहिए। श्रावक अपने धर्म को भी नहीं जानता और मुनि धर्म को भी नहीं जानता, दोनों को भी नहीं जानता है, तो वह धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। दो जगह धर्म की रक्षा करना श्रावक की जिम्मेदारी है। कितनी जगह? दो जगह। वह अपने जीवन में भी धर्म को टिकाता है, श्रावक धर्म, और जो मुनि धर्म है उसको भी सेवा के माध्यम से टिकाता है। जिम्मेदारी तो की, लेकिन मुनि को कितनी जिम्मेदारी है? एक ही जिम्मेदारी, वो स्वयं अपने धर्म को टिकाए, अच्छी तरह से निर्दोष तरीके से टिकाए, परिग्रहण परिग्रही न बने, रत्नत्रय से युक्त रहे, संयम से सहित रहे, एक धर्म को निर्दोष रूप से टिकाए और अच्छी तरह से अपने जीवन को कल्याणमय बनाए। जीवन का कल्याण है, जीवन का लक्ष्य है। ये मुनि धर्म है। मुनि धर्म में एक ही जिम्मेदारी, किंतु क्या इतना ही कहे हम कि मुनि महाराज अकेले अपने धर्म का ही पालन करते और गृहस्थों की तरफ बिल्कुल ही नहीं देखते? हाँ, ज्ञान देने का अधिकारी को मुनि है या श्रावक? मुनि है। ज्ञान देने का अधिकार श्रावक को नहीं, क्योंकि ज्ञान किसका प्रश्न उठता है, धर्म का क्या, संसार का ज्ञान, संसार कैसे करना, क्या करना, इसका ज्ञान क्या, धर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, संसार कैसे करना कैसे नहीं करना, इसका ज्ञान तो आप दे सकते हैं। किसको? मुनियों को, साथी को, क्या संसार करते हो, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, आपस में आप लोगों की बात चलते ही करें, क्या संसार कर रहे हो, दुनिया ऐसी संसार करती है कि बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। श्रावक संसार कैसा करना चाहिए उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति का ज्ञान एक दूसरे को देता रहता है। तो किस शास्त्र के ज्ञाता है वो? संसार शास्त्रों के ज्ञाता श्रावक है और धर्म शास्त्र की ज्ञाता मुनि। पर श्रावक को ये कहा गया है, श्रावक संसार को भी अच्छी तरह से करे और साथ साथ श्रावक धर्म के शास्त्रों को भी पढ़ करके उतना धर्म का ज्ञान भी वह हासिल करे, पढ़े भी और सुने। श्रावक धर्म को पढ़े भी और श्रावक धर्म को सुने, इसलिए ये पाठ छठा पाठ अब श्रावकों के लिए आया। श्रावक धर्म को किस प्रकार से श्रावक करता है और उन श्रावकों की कैटेगरी कितनी, कितने प्रकार के श्रावक कहे जाते हैं, मैं कह रहा था जो ग्रह त्यागी है, किंतु वस्त्र करते हैं, वो हो गए क्षुल्लक अयलक और शुल्लिका। क्षुल्लक अयलक और शुल्लिका तीन हो गए। अब वस्त्र भी रखते हैं, सम्यक दृष्टि है, प्रतिमाधारी है और घर में रहते हैं, चार विशेषताएं ध्यान में रखना, प्रतिमाधारी है, सम्यक दृष्टि, दोनों चीजें धर्म की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि है, प्रतिमाधारी है, वस्त्र रखते हैं, घर में भी रहते हैं, चार बातें उनको कहना चाहिए।
प्रतिमाधारी
उनको कहना चाहिए प्रतिमाधारी श्रावक। प्रतिमाएं कितनी होती हैं तो ध्यान रखना 11 होती है। प्रतिमा का मतलब ही होता है भगवान की प्रतिमा नहीं, भगवान की भी प्रतिमा होती है मूर्ति, उसको भी प्रतिमा कहते, वो नहीं। श्रावक के जो व्रताचरण है वो 11 प्रकार से इनको प्रतिमा कहते, इन प्रतिमाओं के माध्यम से वह महाव्रत की ओर बढ़ता है, मुनि बनने का अभ्यास करता है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते 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 11 प्रतिमा पर पहुंच जाएगा तो क्षुल्लक या अयलक कहलाएगा, क्षुल्लक या अयलक कहलाएगा। और 11 प्रतिमाओं में से पहले से लेकर 10 प्रतिमा तक, इन 10 प्रतिमाओं को ग्रहण करेगा तो भी वह घर में रह सकता है, 10वीं प्रतिमा तक घर में रह सकता है। पहली प्रतिमा से 10वीं प्रतिमा तक रखकर, घर में रखकर उनका पालन कर सकता है। पर 11वीं प्रतिमा लेना हो तो उसमें तो ये अनिवार्य है कि वह घर छोड़े, घर त्यागे, सुलभ बने अलग बने, इसी का मतलब हाथ में आया। एक बात और ध्यान में रखना है, सुलभ अलग ये दो पद हैं जो उत्कृष्ट श्रावक के कहलाते हैं, इनको उत्कृष्ट श्रावक कहा जाता है, उत्कृष्ट श्रावक। उत्कृष्ट श्रावक ये दोनों कहां रहे प्रश्न होता है, कहां पर रहे रहने का मतलब किसके साथ रहे। हाँ, ये विधान ये मुनियों के साथ में रहे और मुनि व्रतों का अभ्यास करें। इन 11 प्रतिमाओं के माध्यम से मुनि व्रत का अभ्यास करें, मुनि बने। अब किंचे कमंडलू जहां तक ये किंचे कमंडलू रखने का अधिकार एक तो मुनि को है, शुल्लक को है और ऐलग को है। शुल्लक और ऐलग में से भी ऐलग को तो नियम से पिछली कमंडलू धारण करना चाहिए, शुल्लक को पिछली कमंडलू धारण करने का कोई नियम नहीं है। किंतु शुल्लक और ऐलग के हाथ में जो पिछली कमंडलू आ गए इसी जमाने में आए, ये आप लोगों को मालूम नहीं, इसी जमाने में आए। 11 प्रतिमा दोनों की होती है, ऐलक की भी 11 प्रतिमा होती है और शुल्लक की भी 11 प्रतिमाएं होती है, पर पिछली और कमंडलू जो आया है वो इसी जमाने में आया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, एक तरफ तो जिनके पास प्रतिमा नहीं कुछ भी नहीं पर फिर भी किसी कमंडलू रखते, प्रतिमा एक भी नहीं होती, व्रत कुछ भी नहीं होते, न सम्यक दर्शन की बात, रत्नत्रय होता ही नहीं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र चर्चाएं उनमें नहीं, फिर भी हाथ में पिछली कमंडल रुकते मतलब कौन? नहीं, अपने समाज में बता रहे रत्नत्रय होता है ना, पिछली कमंडल उनके हाथ में, वो पिछली कमंडल क्या विदाउट प्रतिमा के रख सकते? नहीं रख सकते। अब वो है क्यों, ये प्रश्न उठता है, कब से है और क्यों है, कैसे है, क्यों रखते हैं, ये प्रश्न उठता है। उनके हाथ में पीछे कमंडलू आना ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब भारत परतंत्र हुआ तो यहां पर मुनियों का विभाग रुक गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि मुनि भारत में विहार नहीं कर सकते, नग्न होकर वस्त्रधारी रख करके विहार भले करें लेकिन नग्न मुद्रा में विहार नहीं कर सकते। इस प्रकार से जब भारत मुसलमानों से परतंत्र हुआ था लगभग 12वीं शताब्दी की बात, यानी आज से 800 साल पहले की बात, उस समय के जो मुनि थे उन मुनियों को वस्त्र धारण करके रहना पड़ा कीचड़, और जहां रहना पड़ा उसको मठ कहा जाने लगा। मुनियों के मठ नहीं होते, मुनि मठ भी नहीं रह सकते, शुल्लक ऐलग मठ में नहीं रह सकते, 11 प्रतिमा धारण शुल्लक आरिका और मुनि ये तीनों मठ में नहीं रह सकते, घर में नहीं रह सकते, ये निरंतर समाज में विहार करते रहने का ही नियम है। ऐसा क्यों? मोह को नष्ट करना, परिग्रही नहीं बनना है, मोह को नाश करना है, किसी भी वस्तु से किसी भी व्यक्तिगत से मोह होना नहीं करना नहीं। इस प्रकार उनकी चर्या है तीनों की, कौन कौन सी? शुल्लक ऐलग आरिका और एक मुनि, इन तीनों की चर्या कैसी? वो भी घर में नहीं रह सकते, मुनि व्रत उनका भी विहार होना चाहिए। उस समय के जो मुनि महाराज थे, समस्या आ गई, अब दिगंबर मुनि बन करके विहार करना मुश्किल हो गया। तो उस समय के मुनियों ने क्या कर दिया, वस्त्र धारण करना ही पड़ा और कहां रहना पड़ा, एक स्थान बना लिया। समाज ने भी कहा कि तुम एक ही जगह रहो, फिर आपको हम गुरु जैसे मानते रहेंगे। तो जब मठ में रहने लगे और वस्त्र धारण करने का प्रसंग आ गया, तो एकदम से तो नहीं आया, एकदम से तो वस्त्र धारण करने का प्रसंग नहीं आया, धीरे 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 वस्त्र धारण करते चले गए। एक दिन में कोई वस्त्र धारण नहीं करता मुनि महाराज, धीरे धीरे हुआ है। पहले नग्न अवस्था में ही रहते थे, मठ में रहने लगे, नग्न रहने लगे और परिग्रह वगैरह स्वीकार करने लगे। ये सब कुछ हो गया तो मुनि अवस्था में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों भी चले गए, परिग्रह बन गए। वेश नग्न है, रत्नत्र नहीं है, उसमें भी धीरे धीरे सिखला जा रहा है। नगन का भी क्या करने लगे, मठ में रहते समय तो नग्न रहते थे, बाहर आते समय वस्त्र पहनते थे, मजबूरी थी, कहीं यात्रा करना हो, रेलगाड़ी इत्यादि, तो वस्त्र पहन करके स्टेशन तक जाएंगे, बैठेंगे और चलेंगे, ऐसा होता है। और कहीं समाज में जाना हो तो लोग आसपास में होंगे, आठ दस लोग वस्त्र पकड़ेंगे और बीच में से चलेंगे, ऐसा नहीं चला। बहुत समस्याएं आई हैं इतिहास में, मुनि धर्म पर इतना संकट और उपसर्ग आए हैं, उन सारे संकट और उपसर्गों को टालने के लिए 800 साल लगे। भारत जब स्वतंत्र हुआ, पुनः मुनि धर्म का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ और दिगंबर मुनि बन करके स्वतंत्र रूप से विहार करने का पुनः अवसर आया। भारत स्वतंत्र होने के बाद 1900 स्वतंत्र कब हुआ भारत, 1947 में इधर भारत स्वतंत्र होने जा रहा था और इधर जैन धर्म में एक ऐसे संत पैदा हो गए, ऐसे साधु पैदा हो गए जिनका नाम शांति सागर। इधर गांधी जी और इधर शांति सागर। शांति सागर जी क्रांति करने लगे, भारत स्वतंत्र होने जा रहा है तो सभी लोग अपने अपने धर्म के गुरु, अपने धर्म, अपने शास्त्र, अपने आचरण, आचार विचार, सबको स्वतंत्रता रहेगी। तो ये स्वतंत्र हो गए, जैन धर्म को स्वतंत्र किया, मुनि बनने के मार्ग को स्वतंत्र किया, सबसे मुनि, पहले मुनि भारत में। विहार करने वाले दक्षिण से लेकर उत्तर तक विहार करने वाले मुनि कौन हुए, शांति सागर। उसके बाद ही मुनि परंपरा शुरू हो गई और ऑल इंडिया लेवल पर मुनि लोग निर्ग्रंथ रहकर बेधड़क वो करने लगे, विहार करने लगे। इस प्रकार से जैन धर्म का प्रचार प्रसार गुरुओं के माध्यम से होना प्रारंभ हो गया। तब से लेकर अब तक 800 साल 700 साल के बीच में शांति सागर जी को लगभग हो गया होकर के 50-60 साल तो हो ही गई समाधि होकर। तब से लेकर 12वीं शताब्दी से लेकर अभी तक दिगंबर मुनियों का विहार होता ही नहीं, विहार भी रुक चुका। इसी बीच में श्रावक वर्ग भटक गया धर्म से। जब जब समाज में गुरु नहीं होते तब तब समाज भटकता, धर्म से भटकता, संसार से नहीं, संसार को खूब जोरदार से करता है, संसार से कभी नहीं भटकता, धर्म से भटकता है। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी परंपरा को, अपने मूल शास्त्रों को, अपने तत्वों को, अपने सिद्धांतों को भूल जाता है। भूल रहे सभी श्रावक लोग। और ये हो गया कि वैदिक संस्कृति का प्रभाव इतना जैन धर्म पर पड़ा कि अब पता नहीं चल रहा है कि वैदिक क्रियाएं कौन कौन और जैन धर्म की क्रियाएं कौन कौन, मिक्स हो गए। बाजार में जिसके साथ रहते हैं उसके साथ रखकर उसकी संगति को, संगति से संस्कार ले आते हैं घर में। अब अपने घर में कुल देवता कौन है आप समझो, शांति सागर महाराज तक ये कुल देवताएं बन गए। कौन से कुल देवता थे? हाँ, घर घर में रखे, और रसोई घर में अलग से एक अलमारी होती है, रसोई घर में और देवता की अलमारी। क्या उनको भोजन कराना है? रसोई घर में अलमारी बनाने की पद्धति जैन पद्धति नहीं है। जो आज आप लोगों के घर में कहीं कहीं दिखते हैं कि रसोई घर में ही देवता का वो है, ये वैदिक पद्धति होना भी नहीं चाहिए। देखो जैनों के देवता, कुल देवता कौन है? अरहंत भगवान जी के नहीं, तीर्थंकर भगवान जी के नहीं। तो तीर्थंकर भगवान को रसोई घर में रख सकते हैं। तो ये रसोई घर में जो वो बन गया, स्थान बन गया, अलमारी बन गई, क्या बोलते हैं उसका अलमारी, देवघर, 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 बाजार में सभी देव की पूजा करती है। देव भूत पिशाच व्यंजन आदि की पूजा तो ये वैदिक संस्कृति है। वैदिक लोग यंत्र देवों की पूजा, भवनवासी देवों की पूजा, ज्योतिष देवों की पूजा, ये वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में स्वर्ग के देवगति के देवों की पूजा करने का पद्धति आई। मूल में उनके यहां ये नहीं था देवों की पूजा, मूल में उनके संस्कृति में बताया जाता है केवल वो यज्ञ और हवन ही उनके कार्य थे। क्रियाकांड मात्र, क्रियाकांड मात्र वैदिक धर्म कहलाता था। कालांतर में मूर्ति पूजा को, देव पूजा को इन्होंने कालांतर में सीखा, जैनों का देखा देखी, जैन परंपरा को देखा देखी, मूर्ति पूजा और देव पूजा को सीखा। इतिहास ऐसा है, उनका भी अब अपना था। पर जैनी अनादिकाल से अरहंत की दिगंबर अवस्था की पूजा करते चले आ रहे हैं। ये जैन धर्म की संस्कृति और ये आना नहीं, इसका कोई अंत नहीं। जितना खोजोगे उतना पीछे जाओगे, उतना अरहंत भगवान 24-24 तीर्थंकर होते चले आए, पंच परवृष्टि होते चले आए, इसका कोई अंत नहीं करता। परंतु ये जो वैदिक संस्कार है वैदिकों में, उनके यहां एक हवन यज्ञ होम आदि के अलावा कुछ भी नहीं था। यज्ञ हवन होम इत्यादि ही जैन धर्म में जो आज दिखाई देते, ये उन्हीं का छाप है। मूलतः अपनी संस्कृति यदा नहीं, अब वो जैनों का देखा देखी, इस इधर का प्रभाव उधर भी गया। क्या गया है? इधर का प्रभाव, मूर्ति पूजा हम करते थे, मूर्ति पूजा हमारी बहुत प्राचीन संस्कृति है, अधिक नहीं रही हो लेकिन प्राचीन संस्कृति है। हालांकि 1000-2000 साल पहले की मूर्तियां बहुत कम मिलती, चतुर्थ काल की मूर्ति बहुत कम, चतुर्थ काल में तो चतुर्थ काल में थी मूर्तियां लेकिन बहुत कम उपलब्ध हुई। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में मंदिर और मूर्ति पूजा બહુ ઉત્તમ છે જેનો પછી પદ્ધતિ અનાદી છે પર કમ છે કમ ક્યુ રહી ઇસકે પીછે રહશે ચૌથે કાલ મેં જબ સાક્ષાત તીર્થંકર ભી રહેતે હૈ સાક્ષાત મુનિ લોગ ગુરુ લોગ અવધિ જ્ઞાની મનપુર જ્ઞાની કેવલ જ્ઞાની યે જબ રહેતે હૈ તો કિતની અનિવાર્યતા મંદિરો કી નહીં હોતી જબ સાક્ષાત પરમાત્મા સુલભતા સે આપકો ઉપલબ્ધ હો જાએ બતાયા જાતા હૈ હજારો મુનિ કેવલ જ્ઞાની આત્મ અવસ્થા મેં વિહાર કરતે થે ભારત મેં પુરાણો મેં શાસ્ત્રો મેં યહાં પઢતે હજારો की संख्या में केवल ज्ञानी रहते थे आज हजारों की संख्या में तो साधारण मुनि महाराज नहीं हजारों की संख्या में आधिकारी नहीं हजारों के संख्या में तो शुल्लक ऐलक वगैरह भी नहीं हजारों की संख्या में जब केवल ज्ञानी रहते होंगे तो पूरे भारत को क्या अन्य देशों को भी केवल ज्ञानी उपदेश देते रहते कवर करते होंगे ना और केवल ज्ञानियों का दर्शन सुलभ रहता होगा ना आसानी से प्राप्त होते ना तो उन वही तो भगवान है जब भगवान हमारे सामने साक्षात रहते हैं तो मूर्ति की क्या जरूरत पंचम काल में केवल ज्ञान प्राप्त होना बंद हो गया चतुर्थ काल तक केवल ज्ञान होता रहा उसके पश्चात पंचम काल में भी तीन केवली भगवान हो गए लेकिन उनका भी जन्म चतुर्थ काल में था पंचम काल आने पर उनको पंचम काल में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ केवल ज्ञान प्राप्त करने को मोक्ष चले उनके पश्चात कोई भी केवल ज्ञानी आज तक नहीं हुए जब केवल ज्ञानियों का अभाव हो गया तो हम अर्हंत भगवान की प्रतिमा बनाना प्रारंभ कर जोर शोर से शुरू हो गया अरहंतों की प्रतिमा बनाना मंदिर बनाना बड़े जोरदार से शुरू हो गया बनाते 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 अब यहां तक आया पेटवर्डा में समोसा बन रहा है और अब क्या साक्षात हम केवली के सानिध्य में बैठकर के दस दक्षिण आसन नहीं कर सकते अब हमारे लिए प्रतिमाएं ही पूजनी है वंदनी है साक्षात गुरु को मिल सकते हैं साक्षात आरिका मिल सकती है साक्षात शुल्लक ऐलक मिल सकते हैं साक्षात ये प्रतिमाधारी श्रावक मिल सकते हैं साक्षात की मूर्तियां इतने तो मिल सकते हैं लेकिन साक्षात अरहंत तो मिलेगा क्या है? आज पंचम काल में साक्षात अरहंत मिलने वाले नहीं पुनः चौथा काल को लौटना पड़ेगा जब यहां अरहंत और दिखेंगे भावी काल में 24 तीर्थंकर और होने वाले कितने समय बाद होने वाले हैं आपको ज्ञात है हाँ भगवान महावीर के बाद तो चतुर्थ काल समाप्त हो गया पंचम काल अभी शुरू हुआ है ये पंचम काल 21,000 वर्ष का है ये काल और आएगा जिसको छठा काल कहते हैं वो भी 21,000 वर्ष का है ये काल और आएगा उसका सर्पिणी का प्रथम काल कहते हैं वह काल 21,000 वर्ष का है और एक काल आने वाला है उसको उत्सर्गणी का विधि काल कहते हैं वो भी 21,000 वर्ष का है इस प्रकार 21,000 वर्ष के कितने हैं चार कितने साल हो गए चौरासी हजार वर्ष लगभग उसमें से अभी पंचम काल के 2,500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो 2,500 वर्ष में से निकाल हाँ 2,500 वर्ष निकले पंचम काल तो उस 84 में 2,500 वर्ष निकाला 2,500 वर्ष कितने रह गए साढ़े 85,000 वर्ष के पश्चात पुनः यहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म हुआ। समझ में आ गए कितने हजार वर्ष बाद, 85,000 वर्ष के बाद इसी भारत भूमि पर तीर्थंकरों का जन्म होगा। उस समय एक प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। कौन से तीर्थंकर बनेंगे? प्रथम तीर्थंकर कौन बनने वाले हैं मालूम? राजा श्रेणी का प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं। भविष्य काल के प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेणी का। ये राजा श्रेणी का किसके समोचरण में थे? महावीर भगवान के समोचरण में थे। महावीर भगवान के समोचरण में राजा श्रेणी था, वो एक राजा था। आप लोग कौन से समोचरण में? हम किसी के समोचरण में नहीं, पेट वर्गों में बनने वाले नए समोचरण में विराजमान हैं। दशरक्षण में बहुत आनंद आने वाला है, सबको भाग लेना है। संसार तो अनादि से किया है, करते ही जाना है। 10 दिन समय निकालेंगे तो संसार कहीं जाने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं। संसार मिटेगा क्या? खराब होगा क्या? जंग लगेगा क्या? नहीं, जंग भी नहीं, ताजा भी रहेगा। संसार को कभी जंग नहीं लगता, धर्म को जंग लगता। क्योंकि धर्म को उदासीन रूप से छोड़ेंगे तो ये जंग खाता, उस पर जंग चढ़ता है, भूल करते। समोचन में बैठ करके अपने को बहुत अच्छी तरह से दशरक्षण का आचरण इस बार करना है और उत्साह से करना है। नाम कितने आ गए? नाम बिना शुरू किया है कि नहीं? इधर उधर का तो मालूम पड़ गया संख्या। इधर कितने लोगों ने दिया? धीरे धीरे क्यों दे रहे हैं? कल तक सभी को नाम दे देना चाहिए। হবে আর কাজ সূচনা মিলে না জিনিস সমঝায় জলদি হো না ব্যবস্থায় আগে কি ফটাফট হোনা চাই कितना क्या ये लोग आपके आगे किसी भी थी क्या दक्षिण देंगे सोया हुआ दक्षिण क्या माता मार रहे हैं क्या कर रहे हैं बहुत मुश्किल हो रहा है वही तो किस काम के लिए कोई फायदा नहीं उजेंद्र में जन्म लेना अभी तय नहीं हुआ था ना समय पास आ
जैन धर्म की संस्कृति को उत्तर भारत वाले श्रावक बचा रहे हैं।
आप लोग क्या हैं कुछ भी नहीं उसमें से। चिंतनशील होना है अपने को अधर्म के प्रति, बहुत चिंतनशील होना पड़ेगा और धर्म को उत्साह के साथ भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती में नहीं आना। अब जबरदस्ती नहीं चले, अब तो सोच सोच समझ कर उत्साह से, स्वयं के उत्साह से करना पड़ेगा। सोयो नहीं, ये कब तक निद्रा करोगे? जेतर में से थोड़ी बचेगा, तुम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है धर्म को बचाने का, संस्कृति को बचाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और हर घर की जिम्मेदारी, और कमर कस करके घर छोड़ के आना पड़ेगा। उसको हम करेंगे अपना जीवन का, अपने उद्धार के लिए हम करेंगे, और अपने उद्धार के लिए आप आत्मकल्याण करने लग गए तो ही संस्कृति बचेगी। आत्मकल्याण नहीं कर रहे हैं तो क्या संस्कृति बचेगी? धर्म केवल सुनने का भी है, सुनने का नहीं कुछ करने का भी है। यहाँ दस लक्षण आता है श्रावकों के लिए आता है, कमुनियों के लिए आता है। दस धर्म जीवित, उनका आचरण किसमें होता है? श्रावकों में। जीवित तो होता है मुनियों में, मुनि गुणों की पूजा श्रावक करता है। दस धर्म ये आत्मा के गुण है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, नाम याद है कि नहीं? वो भी नहीं है, दिया ही नहीं तो नाम कहां से आए? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग अतिशय ब्रह्म से कहते हैं। ये दस धर्म है जिनकी आप पूजा करते हैं, ये दस धर्म मुनियों में पाए जाते हैं। परिग्रह छोड़े बिना ये दस धर्म जीवन में अवतरित नहीं होते, ये गुण आते नहीं। दस गुण, इन दस गुणों को श्रावक पूजा करता है, मुनियों को उद्देश्य बना करके उनके गुणों की पूजा करता है, उनके शरीर की नहीं, उनकी दिगंबर मुद्रा की नहीं, बल्कि दिगंबर मुद्रा में जो दस गुण होते हैं उनकी श्रावक पूजा करता है। सुन रहे हैं? कान फड़ाना नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं करना, ये जगाना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ दक्षिण में लोगों को, इतने सोए हुए। जिम्मेदारी समझोगे अपने अपने? कुछ घर छोड़ करके आना है दस दिन यहाँ, और कुछ सीखना है, सुनना प्रारंभ करना है। कल तक नाम भी देना अपने अपने, कैसे यहां लेओगे कि घर घर जाओगे, क्या करोगे? अब तो घर ही जाना पड़ेगा इन लोगों को।
सब लोग बोलते सुबह के 11 बजे तक हमारे के बाद में
जाए ना,
यही
9 बजे के पहले
सब लोग
9:30
9:10 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 बजे
हाँ 9:30 तक खत्म हो जाएगा।
यही बोल रहे हैं कि
6 बजे शुरू हो जाएगा तो 9:30 बजे तक
बहुत काम आएंगे।
बिल्कुल,
तो बाद में बोलते हम दूसरे दिन सुबह ही आएंगे।
हाँ, वो भी मजबूरी में
है ना, वो नौकरी को जा रहे हैं, ये कर रहे हैं,
नहीं महाराज बोल रहे हैं इसलिए मजबूरी हो,
नौकरी को जाना
है। धर्म करना है तो स्वयं के लिए कुछ करो, महाराज कह रहे हैं इसलिए मत करना।
ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया तो नौकरी वाले भी आ जाए।
हाँ, नौकरी वाले भी आ जाए, उत्साह से आ जाए, कुछ आत्मकल्याण करना है इस उद्देश्य। आत्मकल्याण क्या है इसको समझो, जीवन का कल्याण धर्म से होना है। धर्म आत्मा का कल्याण करता, परभोग का कल्याण करता। तो सवाल ही नहीं है, जब नौकरी वाले भी पैर हो गए तो दुकान वालों का तो सवाल ही नहीं उठता, दुकान तो बंद हो सकती 10-11 बजे तक।
वो आएगी सब ध्यान में, ऐसे ऊपर को टैक्स ऊपर को टैक्स।
हाँ,
सुबह क्या
सुबह प्रॉब्लम
नहीं है? हाँ,
तो 100 घर है, 100 135 घर सुना है क्या? 100 है, 100 है, तो नियम से कंपल्सरी सामाजिक कानून बना लेना कि एक व्यक्ति को घर से बाहर निकालेंगे। शुरुआत में ऐसा ही होता है, जबरदस्ती ही होता है। हाँ, कि ढीला ढाला छोड़ने से आप सो जाएंगे। नियम से एक घर से एक व्यक्ति को बाहर निकालना। हाँ, जिम्मेदारी आपकी, सब लोगों की जिम्मेदारी। घर घर जाना, अगर कोई किसी एक घर का भी व्यक्ति अगर छूटता है तो छोड़ना नहीं होगा, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। समाज के लिए आप क्या दे रहे हैं, समाज संस्कृति की रक्षा में आपका क्या हाथ है? देखो, सुनो, क्या बताना, आप लोगों को समाज के लिए कुछ सहयोग देना है क्या नहीं? सुन रहे हैं, बोलना है, समाज के लिए क्या सहयोग दोगे? समाज में धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा का नाम ही है देश की रक्षा, समाज की रक्षा। आप उस मामले में क्या सहयोग दे रहे हैं, चिंता है कि नहीं आपको? आप समाज की इकाई हैं, समाज के एक अंग हैं, समाज में रहते हैं। आप धर्म के प्रति क्या कर रहे हैं, ये आपको चिंता है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं चिंता? तो आप अगर जैन हैं और जैन समाज के, तो जैन संस्कृति की रक्षा में आपका हर घर का योगदान यहाँ चाहिए। किस रूप में दोगे आप? समय निकालना पड़ेगा ना, यहाँ समय दान देना पड़ेगा। और कुछ ये तो उनके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं, धर्म अपने लिए होता है, आत्मकल्याण के लिए होता है। आत्मकल्याण अगर आपका होने लग गया, आप ये क्रियाएं करने लग गए, तो संस्कृति की रक्षा हो गई। जैन संस्कृति का मतलब कोई एक भूत नहीं है, वो धर्म कोई बाहर नहीं होता, धर्म को अपने भीतर में जगाने की कोशिश करना है। आपके भीतर में धर्म जग गया तो संस्कृति की रक्षा हो गई। संस्कृति आप में टिकती, धर्म को आपने अपने आप को टिकाना है। तो श्रावण धर्म में जो साल भर में 10 दिन ये आते हैं, ये 10 दिन आप पूजा नहीं करेंगे तो आप गृहस्थ नहीं है, आप संस्कृति में आपका कुछ भी योगदान नहीं है। आप अपना कल्याण क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न आता है। आप नहीं करते तो क्यों नहीं करते, समस्या क्या है आपको? क्या केवल संसारिक जीवन जी करके मरना ठीक ही ठेका ले लिया है? धर्म समाज के लिए तो कम से कम करो, फिर समाज में पैदा हुए हो तो समाज के लिए तो कुछ धर्म करो। धर्म की देन क्या है आपके तरफ से, ये सोचना है। किंतु धर्म को हम समाज के लिए न करें, हम अपने लिए करें, अपने लिए करें और अपने उत्साह से करें तो संस्कृति टिकती है। जबरदस्ती में भी संस्कृति टिकने वाली नहीं है, वो तो समर्पित भाव से करने पर ही संस्कृति की रक्षा होगी। श्रावक संस्कृति और मुनि संस्कृति, इन दोनों का टिकना तीर्थ का टिकना है। भगवान महावीर का तीर्थ दो से टिकता है, मुनियों में रत्नत्रय टिके और श्रावकों में श्रावक के आचार विचार टिके। ये प्रयत्न करना जैन धर्म की रक्षा है। ये चिंतनशील होना है आपको घर घर में। अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हमको सब कहना पड़ता है, कड़वे प्रवचन भी कहना पड़ता है और मीठे प्रवचन भी। लेकिन बहुत कुछ करना है समाज के लिए। साधु जब इतना अपना समय निकाल करके दे रहा है तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि नहीं घर घर की? साधु समाज के व्यर्थ नहीं क्या? समाज में साधु सबसे बड़े निधि माने जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से देश और धर्म टिका। धर्म टिकेगा तो भी देश टिकने वाला है। धर्म उसका आधार है, देश का, समाज का आधार है। और आप समाज की एक इकाई है, आपके पैरों के नीचे भी जो धरती है वह धर्म के कारण से है। धर्म में अगर आप संगठित नहीं रहते तो तुम्हारा वह 4-5 फुट का मकान भी निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से, रोते रहोगे। धर्म को टिकाएंगे तो ही देश टिकने वाला है, ये उसका नियम है, सूत्र है, सिद्धांत है। भारत आज तक जीवित रहा है किसके बल पर रहा है? धर्म के बल पर रहा है। अनादि से यहाँ तीर्थंकरों की परंपरा रही है, राम और कृष्ण के महान पुरुषों की यह धरती है। महान पुरुष थे, कर्मों को नष्ट कर दिगंबर दीक्षा लेकर वो भी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, महान राम और कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो मोक्ष नहीं गए थे, लेकिन थे तो जैन थे, जैन वंश नेमनाथ भगवान के, नेमनाथ भगवान के तीर्थ परंपरा के थे, उनके भाई हैं, चचेरे भाई कृष्ण नेमनाथ भगवान, नेमनाथ भगवान ये उच्च कुलीन थे, एक क्षत्रिय थे, राम मोक्ष गए, तीर्थंकर सभी मोक्ष गए, उनके वंशज हम हैं। जरा समझो हम क्या हैं, और अपने आप को जरा गर्व से जगाओ, सोए हुए जीवन को, हम बहुत सोए हुए हैं, ये चिंतन तो करो। इतना उदासीन कि एक महीना निकल गया, बहुत कुछ ज्ञान आ जाता आप लोगों को, घर में बैठे रहे ऐसा लगातार आते तो बहुत कुछ हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साधुओं के आने पर प्रवचन सुनना तो बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, प्रवचन से ही सब कुछ ज्ञान आता है। संस्कृति की रक्षा, देश की रक्षा की बात यहाँ होती है, और उन दोनों की बात होती है तो तुम्हारे घर की रक्षा की बात भी वहां होती है। तुम्हारा परिवार कैसे टिकेगा, तुम कैसे टिकोगे, ये सभी चर्चा यहाँ है। धर्म कोई फालतू बात नहीं है, जो दिमाग में लोग कहते हैं ना, जनरली तथाकथित लोग कहते हैं धर्म तो अनावश्यक वस्तु है, हमारा नहीं है, मूर्ख है वो, कान फड़फड़ाते हैं वो, हम धर्म हमारा नहीं है। और ऐसे मूर्खों की संख्या बढ़ गई तो देश हाथ से चला जाएगा, एक समय वो भी आ सकता है। ज्ञानी जीव देश में हो तो ज्ञानी जीवों से ही देश की रक्षा हो सकती है, क्या करना क्या नहीं करना ये समझ में आता है। हमारा देश स्वतंत्र क्यों, किस कारण से हुआ था मालूम, उन लोगों से पूछो जो काम बड़ा बढ़ाते हैं और धर्म को अनावश्यक समझते हैं, पूछो उनसे देश स्वतंत्र क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ था, वो कुछ उत्तर नहीं दे सकते, मूर्ख हैं वो, कुछ जानते नहीं, इतिहास भी नहीं जानते और वर्तमान के धर्म को भी नहीं जानते, अति मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते वो, उत्तर नहीं दे सकते। हमारे देश स्वतंत्र हुआ था धर्म के विनाश होने से, धर्म कहां नष्ट हुआ, पहले श्रावक धर्म नष्ट हुआ था, इसलिए क्या हुआ, ऐसे हमारे राजा लोग विषय हो गए, विषय कषाई हो गए, इंद्रिय भोगी हो गए, छातीलाल पूजा के अधीन हो गए, और ऐसे राजा लोगों के कारण से परकी लोगों ने उनके सहारे से उनका सहारा उन्होंने लिया, इनका सहारा इन्होंने लिया, ऐसा होकर के एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए और देश उन्होंने अपनी मायाचार से देश को कब्जा कर लिया, ये हो गया। और ऐसे राजा लोग विषय कषा में, इंद्रिय भोगों में जो डूब गए थे, छातीलाल पूजा के अधीन हो गए थे, इन्हीं के कारण से तो हो गए, उन राजाओं ने धर्म छोड़ दिया था, इसलिए धर्म के देश की रक्षा नहीं हो पाई। जिस वक्त आप धर्म छोड़ते, पहले तो आपका आप स्वयं नष्ट होते, फिर बाद में समाज नष्ट होता, परिवार नष्ट होता, फिर समाज नष्ट होता, फिर देश नष्ट होता। आपको अपना धर्म जो तीर्थंकरों ने बताया है उसको टिकाने का प्रयत्न करना, और व्यक्ति व्यक्ति में जैन धर्म टिक गया तो परिवार टिकेगा, समाज टिकेगा, देश टिकेगा। ये सूत्र है, आप समझते नहीं, चिंतनशील नहीं होते, कुछ भी ज्ञान नहीं आपको, इन सूत्रों को अध्ययन करके अपने को आगे बढ़ना है। उत्तर भारत के श्रावक बहुत आगे बढ़ गए, यहाँ पर सोई हुई लोगों को जगाने हेतु तो गुरुवर ने कुछ मुनियों को आशीर्वाद दिया। उसका दिन है कि आज यहाँ पर आचार्य के संघ के साधु आ गए, ज्ञानी साधु। अब कुछ चमक रहा है धर्म यहाँ, लेकिन निद्रा इतनी गाढ़ निद्रा है किसको जगाना नहीं। बहुत कुछ लाइन पर लाना है, गाड़ी को पटरी पर लाना है, बहुत बड़ा काम है। और आप लोग यदि हमको सहयोग देना नहीं चाहते तो अभी बताओ, कायरो युद्ध के मैदान में खड़ा हूं और पूछ रहा हूं कि तुम्हें अपने देश समाज और संस्कृति की रक्षा, जीवन की रक्षा धर्म से करना है कि नहीं। और यदि करना है तो कमर कस के खड़े हो जाओ, सोने से काम नहीं चलने वाला। और धर्म को बचाना है, व्यक्ति में अहिंसा धर्म बच गया, देश बच गया, समाज बच गया। और ये आप लोगों की वर्तमान की पीढ़ी में अगर ये अहिंसा धर्म आ गया तो 100 साल की चिंता कुछ भी नहीं होगी। 100 साल तक हमारे देश को कोई धक्का नहीं लग सकता। अहिंसा से ही देश बचा है और बचेगा, बच रहा। जब जब ऐसे गुरुओं का, जब जब ऐसे ऐसे महान पुरुषों का, तीर्थंकरों का जन्म होता है, देश में सुख रहता है, देश सुखी रहता है। और जब उनका अभाव होता है तो देश दुखी होता है, लोग भटक जाते हैं, लोग संसारी रहते हैं, कुछ नहीं जानते हो, इंद्रिय भोग के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। अब भोगों में कुछ भी अनर्थ कर डालते हैं, वो भेड़ होता है ना, भेड़ चाहते थे, भेड़ कुछ नहीं जानते। अगर भेड़ चराने वाला मालिक तो सामने नहीं हो तो नीचे ही जाते, नीचे मुख पर के जाते हैं, वो सामने नहीं देखते, ऐसे चलते। और एक भेड़ गड्ढे में गिर गया तो सभी गिर गए। ऐसी स्थिति संसारी जीवों की, परिग्रही जीवों की होती है। ये परिग्रह बहुत अनर्थकारी होता है। इस परिग्रह का यदि हम सदुपयोग करें तो जीवन का अमृत बन जाए, दुरुपयोग करें तो नरक के गड्ढे में धकेल दे। ऐसा ही परिग्रह इंद्रिय भोग ऐसा होता है। और धर्म हमें प्रति समय संभालता है, ब्रेक लगाता है, संयम दिलाता है, सावधान दिलाता है। सावधान, अपने आत्मा को बचाओगे तो ही देश को समाज को बचा पाओगे, ऐसा सावधानी देता है धर्म का ज्ञान। तो ये करना है कि रोज यहां प्रवचन सुनने में कम नहीं पड़ना चाहिए, आप लोगों को उत्साह से सुनना पड़ेगा। सुनेंगे ना, और इसको सुनने के नुकसान तो नहीं तुमको, अब दिमाग से पुराने विचार हटा तो बस धर्म ग्रंथ में क्या सुनना, वो तो जो चार लोग मंदिर जाते हैं उन्हीं का होता है, हम सबका तो है नहीं वो, ये विचार होंगे पुराने। ऐसा ही था कि नहीं बोला है, पहले जो जो आते थे मंदिर वो उन्हीं का, उन्हीं के लिए है, ऐसा है क्या? मंदिर किसके लिए, चार लोगों के लिए है कि सबके लिए? फिर मंदिर आना, देव दर्शन करना, पूजन करना, सत्कर्मों का पालन करना, गृहस्थ धर्म को टिकाना, ये गृहस्थों का कर्तव्य है क्या? नहीं, क्यों नहीं सोचते यहां के पुरुष से? क्या हो गया इनको हा? इतना नहीं सोना है, सोया भी जीवन को संगठित होकर के चलाना है, उत्साह जगा करके काम करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने समर्पण भाव से ही धार्मिक क्रियाओं को करना, मैं अपने लिए आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूं ये कर रहे हैं। मजदूरी में करने वाला नौकर कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। जो मजबूरी से धर्म करता है, कहने से आता है, जबरदस्ती में करता है, वो गदा है, गदा गाढ़ो क्या बोलते मराठी जी, गाढ़ो बोलते हैं। मुझे कुछ शब्द याद नहीं है, कड़वी प्रवचन देने के लिए कभी डालना चाहता हूँ वो आते ही। तो धर्म के प्रति ऑलरेडी उत्साह टिपटा संकेत मिलते ही सावधान, ऐसा होगी चलना ठीक है। सहयोग दोगे मुझे, फिर से पूछता
हूँ
क्या समझते होंगे कि आप आते हैं, ये आते हैं, ये आते हैं, कुछ लोग बहुत निकट थे। लड़के जो है ना, मुझे भूत समझ रहे हो या पिशाच समझ रहे हो, क्या है धारणा साधुओं के प्रति? लड़के क्यों नहीं आते हा? निकट क्यों नहीं आते? लड़के क्यों नहीं आते? एक आए हो, कहाँ छिपके बैठे हो? युद्ध के मैदान में आओ, यदि जैन हो। साधु से डरते हैं, गुरु से डरते हैं, साधु से डरते हैं, अपने कमांडर से डरते
हैं।
समाज में लड़के कितने हैं? जवान लड़के कितने
हैं?
50। यहाँ 50 कितने हैं? देखा है मंदिर का और गुरु का, इनका कालेज है वो या ये हो गए। क्यों आप लोगों ने ऐसे संस्कार डाला है तुम्हारे लड़कों पर कि गुरु का दर्शन भी नहीं करते, मंदिर का मुख भी नहीं देखते? क्यों नहीं आते आपके लड़के? यही संस्कार डाला है कि मंदिर नहीं जाना, गुरु के पास नहीं जाना? महान दोषी तो आप लोग हैं, माता पिता। उनको मंदिर तक दर्शन करने के लाने में क्या दिक्कत है आपको? उनको खाना क्यों खिलाते हैं ना? मंदिर नहीं आते और गुरु का दर्शन नहीं करते, खाना क्यों खिलाते आप? खाना खिलाने में आपको शर्म नहीं आती कि मंदिर नहीं जाता और फिर भी मैं खाना खिला रही हूँ? कि नहीं लड़के आप लोगों के यहाँ कॉलेज के लड़के 20 साल के, 15 साल के, 18 साल के, इस उम्र के लड़के हैं कि नहीं? क्यों नहीं आते हो? देखो मौन हो गए, क्या हो गया? क्यों नहीं आ रहे? वो यहां आकर के गुरु का दर्शन नहीं कर सकते? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? कॉलेज का शिक्षण पा रहे हैं और यहां पर धर्म का शिक्षण नहीं देते? अगर तुम कल से उन लड़कों को नहीं भेजेंगे तो कल से क्लास बंद कर दूंगा। आना चाहिए उनको। यही लोग लौकिक शिक्षक यही पा रहे हैं कि धर्म से दूर रहेगा। कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या? नहीं है घर में उसको खाना नहीं खिलाना, आज ध्यान रखना। अगर कल से नहीं आते हैं वो, मैं देख लूंगा। तुम लोगों की कायरता के कारण से लड़के बिगड़ रहे हैं और नई संस्कृति वो बिगड़ेगी, नई पीढ़ी वो बिगड़ेगी, तो 100 साल का हमारा इतिहास बिगड़ जाएगा, भविष्य बिगड़ जाएगा। जहां बीज बोना चाहिए वहां पर बोया नहीं जा रहा है। चिंतनशील नहीं होते तुम लोग, भविष्य की चिंता नहीं तुम्हें? पेट भर खिलाते और उनको स्वच्छंद छोड़ते? इतना लाड़ प्यार करते अपने बच्चे से, अति लाड़ प्यार भी नुकसानदायक है बच्चों को। और वो स्वभाव का धर्म से दूर होते हैं, जवानी अवस्था में ऐसे ही होता है। कल देखते हैं कितने लोग दर्शन के लिए आएंगे, 50 हैं तो मैं 50 देखूंगा कल से। 50 लड़के अगर मेरे पास आकर के नहीं गए तो देख लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो पहला मंदिर आना सीखे, देव दर्शन करना सीखे और गुरुओं के पास आकर के बैठ करके कुछ चर्चा करना सीखे। सिखाओ उनको कि तुम्हारा काम माता पिता का कुछ जिम्मेदारियां हैं इनको निभाना चाहिए। आप अपने घर में अपनी नई पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी लेंगे क्यों? जिम्मेदारी लेंगे उन 50 बच्चों को गुरु के पास भेजना, ले रहे कि नहीं ले रहे? अगर वो नहीं मानता है तो घर से बाहर निकाल देना, ऐसा ही धर्म बचेगा। तुम नहीं बचा पाओगे, गुरु बचाएगा। कड़वी दवा है, मुझे बीज बोना है बच्चों में, और बच्चों को तुम आगे नहीं लाओगे तो मैं क्लास बंद करूंगा। एक घंटे तो कम से कम होना चाहिए, 24 घंटे तो कॉलेज नहीं रहता, शिक्षण नहीं रहता, मुझे मालूम है कितने पढ़ते हैं वो। टीवी के सामने 6-6 घंटे निकलते हैं उनके, मुझे सब रिकॉर्ड मालूम है सबका, कॉलेज का, मैं भी पढ़ा हूँ कॉलेज का, मैं भी कैसे निकालता था मुझे भी मालूम है। मेरे साथ भी बच्चे थे कॉलेज के, वो कैसे क्या करते थे, मैं क्या करता था, सब मालूम है मुझे। किसी बात को छुपाना नहीं, हमारा बच्चा 24 घंटा पढ़ता है, मंदिर आने को समय नहीं मिलता। तुम कहते यही तो लाड प्यार है तुम्हारा, तुमने बड़ा चढ़ा करके रखा उन बच्चों को, बच्चे की जिंदगी को बर्बाद किया है माता पिताओं ने। आज कुछ समझा नहीं उनके जीवन को, जिंदगी को इतना सूट क्यों दे रखा है? इससे धर्म नहीं बचा पाओगे, ध्यान रखो। धर्म से दूर रख करके अपने बच्चे को समाज का सुधार, देश का सुधार नहीं हो सकेगा। आज के कॉलेज के लड़के ही कल के नेता बनेंगे समाज के। कुछ जिम्मेदारी सोचो, समझो। मुझे कल से 50 बच्चे चाहिए, अगर 50 है एक जिम्मेदारी और सुन रहा हूं। 10 लक्षण पर तो हो गई चर्चा, लाभ होगी कि नहीं, क्या समस्या है, किसको क्या समस्या है इसे बताओ। मेरे पास कभी भी आ जाए 10-15 मिनट भी बैठ करके जाए, उतने ही मैं ठीक कर दूंगा, लाइन पर लगा दूंगा। पहले आना जाना शुरू कर दे और पास में बैठना कुछ सीख, सिखाओगे घर में जाकर के, महाराज के पास जाकर के 10-20 मिनट बैठ के आना। क्यों? माता पिता, कल कड़वा प्रवचन हुआ था, धार्मिक शिक्षण बच्चों में आएगा तो समाज स्वर्ण बन जाएगा, समाज अमृत बन जाएगा, अमृत से फूल जाएगा। उनकी भी चिंता करो कि उनमें भी धर्म के संस्कार लाना है। और उन बच्चों को कह देना कि महाराज कोई तुमको ना व्रत देंगे, तुम्हारा ना गुटखा छुड़ाएंगे, तुम्हारे कोई व्यसन छुड़ाएंगे, किंतु वहां पर जाकर के बैठ करके धर्म की चर्चा करके तुम्हें लौटना है। जाओ 10 मिनट 20 मिनट उनका समय ले, टीवी बंद कर देना, ज्यादा अगर देखना है तो टीवी बंद कर देना और उसमें से समय को निकाल करके यहां दे देना। टीवी के सामने 4-4 घंटा बैठता है, क्रिकेट देखता है, और 1 घंटा गुरु के पास नहीं बैठता। क्यों नहीं पूछते आप? क्या आप गुरु नहीं उनके? बच्चे के गुरु माता पिता तो होते ही कि नहीं? क्या तुम ही शिष्य हैं उनके? वो गुरु है तुम शिष्य? ऐसा नहीं हो गया, बच्चे की बात माता पिता सुन रहे हैं। अरे मूर्ख कहां के माता पिता, इतनी मूर्खता तुमने है तो फिर माता पिता काय को बने? ऐसा नहीं सोचो समझो, माता पिता तुम बड़े हैं, गुरु हैं, घर के गुरु हैं, कुछ जिम्मेदारी है अपने बच्चों के प्रति, किस प्रकार के संस्कार हमारे बच्चे में आना है, आना चाहिए, थोड़ी चिंता करो। अभी तक तो ठीक है, अज्ञान अवस्था में तुमने तो लाड प्यार कर दिया और वो गुरु बन बैठा लाड प्यार में, लाड प्यार में तो गुरु बन बैठा, कोई भी बच्चा तुम्हारा नहीं रहता है वो स्वयं तो हो जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक औषधि ध्यान रखना, घर में जाकर के खाना खिलाना ही नहीं, खाने का अधिकारी नहीं। अगर गुरु के पास नहीं जाता है तो घर में खाना खाने का अधिकारी नहीं, तू जा वार्निंग दे दे और चिंता मत करना, मेरा बच्चा मर जाएगा कहीं जाएगा, मरेगा नहीं वो, तुम घर में निकाल दोगे तो मेरे पास ही आएगा, मैं संभाल लूंगा, आएगा ही नहीं आएगा, मेरे माता पिता ऐसा कर रहे हैं महाराज क्या करो, तो मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम्हारी बात नहीं मानता है तो मेरे पास भेज देना, पर मेरे पास आने के बाद मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। हमारे ऐसी गुप्त बात की रहे हमारे यहाँ आदमी बीच में, इसको क्या बनाना है? तुम्हारे बच्चों को गुरु और तुम दो ही लाइन पर लगा सकते हैं, नहीं तो बिगड़ जाएंगे लोग। गुरु लगा सकेगा या तो तुम लगा सकोगे, क्या दोनों मिलकर के लगाएंगे तो अमृत बन जाएगा। उसको क्या बनाना चाहते हैं बताओ, इतना आप 24 घंटा पढ़ा रहे हैं, क्या बनाना है बच्चे को? मूर्ख बनाना है? मूर्ख तो नहीं बनाना, बहुत होशियार बनाना। डॉक्टर बनाना है? डॉक्टर बनाना, उन्हीं बनाना है, उन्हीं बनाना, तुम्हारी जो इच्छा है माता पिता की, वैसा बना। मेरा लड़का मुनि बने तो मुनि बनने के लिए तो वैराग्य चाहिए, और वैराग्य की परीक्षा गुरु करते हैं, उसके बिना तो परीक्षा नहीं होती। माता पिता की इच्छा अगर ये है कि उसको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, बहुत सपने रहते हैं माता पिता के, बड़े बड़े सपने अपने बच्चे के होते हैं कि नहीं? क्या बनाना है आपको? इंजीनियर बनाना है ना? इंजीनियर भी बनेगा तो ढंग का जीवन जिएगा तो भी तुमको वो सहयोग देगा वृद्धावस्था में, नहीं तो तुमको ढकेल देगा। तुम संस्कार आज नहीं डरोगे वृद्धावस्था में तो तुम गेट आउट कर देगा। धर्म के संस्कार आएंगे तो भी बच्चा तुम्हारा तुम्हारी वृद्धावस्था में सहयोग देने वाला है। नहीं तो ऐसी कितनी घटनाएं जिनको धार्मिक संस्कार नहीं, ऐसे बच्चे माता पिताओं की सेवा करते जिन लोग कर रहे हैं क्या? जैसे कोने में कुत्ता पड़ा रहता है ना, सेवक कुत्ता, वैसा देखते हैं बच्चे माता पिता। ये स्थिति क्यों आ गई? धार्मिक संस्कार नहीं, गुरु के संस्कार नहीं मिले और खुद भी संस्कार नहीं डाले, बहुत बहुत लाड़ प्यार किया, सत्संग छोड़ दिया, इसलिए बच्चा बिगड़ गया। किसी को बच्चों को कैसे रखना ये भी मालूम नहीं आपको, कैसे गुरु नहीं आ रहे। संसार में संस्कार, संसार के भी सभ्य संस्कार डालना आप नहीं जानते हैं तो आप क्या है, कुछ मूर्ख नहीं आप। बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते, मूर्ख हैं। ऊंगना नहीं, आप बता दिया, मैं क्लास कभी नहीं ऊंगा। जब बच्चे 50 बच्चे मेरे दर्शन करके जाएंगे और कुछ बैठ करके चर्चा करके जाएंगे, ध्यान रखो यहां पर कितने बच्चे आए हैं, कॉलेज के 3-4 आए होंगे, एक आया बताओ, एक बच्चा आया और ये सब आ गए माता पिता उनके गुरु आ गए, गुरु शिक्षा पा रहे हैं और अपने शिष्य को छोड़ के आ रहे हैं। क्यों बच्चों, आप अपने साथी को ले आओगे ना? हाँ, 50 बच्चे देर सेवा लड़के कॉलेज के लड़के आना चाहिए कि नहीं, कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं समाज के प्रति? यहाँ सबसे मैंने ये कमी देखी, बड़े तो आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं लेकिन वो बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका रहस्य मुझे पता अभी तक नहीं चला, अब पता लगा रहा हूं। ज्यादा नहीं लेना चाहता, 8 बजे तक ही रहूंगा और आपको इसी तरह से 6:30 बजे करंट अटेंड होना है। 8 बजे के बाद उनको भी जरा डिस्टर्ब होता है, उधर जाना जंगल हो गया।